जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा
श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा
श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा
श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा
चंद्र जय गौर भक्त
वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा
श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा
ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 प्यार संख्या 42 से 50 तक, क्योंकि 42 से 49 तक तात्पर्य नहीं है या कहीं थोड़ा सा तात्पर्य है, इसलिए मैं ही केवल पाठ कर रहा हूँ और 50 में जो प्यार है वो आप सब लोगों के साथ मैं पाठ करूँगा। प्यार संख्या 42 है। दास सख्य वत्सल ने आर्य श्रृंगार चारि प्रेम चतुर्विध है भक्त ही आधार। चार प्रकार के भक्त इस प्रेम के चार प्रकार के रसों के पात्र हैं। ये रस हैं दास्य सख्य वात्सल्य तथा श्रृंगार। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज चार प्रकार के रसों की ही चर्चा कर रहे हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि भगवान की भक्ति के मुख्य रस कितने हैं, 5 प्रकार के हैं। और सबसे पहला क्या है, शांत रस। शांत रस के बाद दास्य रस, दास्य रस के बाद सख्य रस, और सख्य रस के बाद वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस के बाद श्रृंगार रस। तो सबसे ऊंचा जो रस है वो श्रृंगार रस है, और जो प्रारंभिक रस है वो शांत रस है। लेकिन यहाँ पर कृष्णदास कविराज शांत रस की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चार प्रकार के जो भक्त हैं इस प्रेम के चार प्रकार के रसों के पात्र हैं, तो 5 प्रकार के रसों की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि कई बार निर्विशेषवादी भी सत्वगुण की अधिकता से शांति का अनुभव करते हैं। जैसे कि गीता में भगवान ने बतलाया है कि सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण है वो सुख में लगाता है। और सुख किसको मिलता है, जिसको शांति मिलती है। क्योंकि गीता में भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, कि जब तक तो कोई व्यक्ति अशांत होता है तो वो सुखी कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सत्वगुण में भी किसी व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। तो चूंकि सत्वगुण के अंदर भी शांति होती है, परंतु जो भक्ति का रस है तो वो तो सत्वगुण से ऊपर है, सत्वगुण के क्षेत्र में भक्ति नहीं आती। तो इसलिए कृष्णदास कविराज शांत रस को भक्ति के अंदर नहीं मान रहे। लेकिन फिर भी शांत रस भी भक्ति में होता है, और शांत रस जो है ना एक दूसरा भी शांत रस है जो कि सत्वगुण की सीमा से बाहर है। परंतु यहाँ कृष्णदास कविराज दास रस से ही भक्ति का प्रारंभ मान रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने भी कई बार ऐसा कहा भी है कि जो भगवान की भक्ति है वो दास रस से शुरू होती है, और जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं ये भी एक प्रार्थना है। और ये क्या प्रार्थना है, भगवान का दास्य मांगने की प्रार्थना है, भगवान से सेवा मांगने की प्रार्थना है। हम जब कहते हैं हरे कृष्णा, इसका मतलब यही है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, और हे कृष्ण की आलाकनीय शक्ति श्रीमती राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ये जो है प्रार्थना भगवान की सेवा के लिए है। तो यहाँ से जो है कृष्णदास कविराज मानते हैं कि भक्ति का रस शुरू होता है जहाँ हम भगवान की सेवा करते हैं। अब तात्पर्य में रूपा जी क्या लिखते हैं, भगवान से दिव्य संबंध होने के लिए कोई ना तो किसी से ऊंचा है ना नीचा, क्योंकि दिव्य जगत में सारी वस्तुएं समान है। तो यहाँ प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं दिव्य जगत की। तो दिव्य जगत में क्या है कि जितने भी भक्त हैं, छोटे से छोटा भी जो भक्त है तो वही भगवान को प्यारा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई छोटे बड़े का भेद है। हाँ, छोटे बड़े का भेद भी है, लेकिन साथ साथ जो महत्व है वो किसी का घटता नहीं है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु इन चरम संबंधों के बावजूद उनमें अंतर होते हैं, अतः दंपति प्रेम का दिव्य संबंध माधुर्य रस सर्वोच्च पूर्णता माना जाता है। आगे उल्लासमयी रति या प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है, किंतु जिस रति का क्रमशः स्वाद उच्चतम होता है वह मधुर रस के रूप में प्रकट होती है। यथोत्तरम असौम स्वाद विशेषोल्लासमयी रतिर्वासन आस्वादी भासते कोपी कस्यचिन। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु से 2.5.38 लिया गया है। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि जो मधुर रस है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। आगे कृष्णदास कविराज कहते हैं, इसीलिए मैं इसे मधुर रस कहता हूं, इसके भी दो विभाग हैं, स्वकीय और परकीय। अतएव मधुर रस कई तार नाम स्वकीय परकीय भावे द्विविध है संस्थान। तब यहाँ पर कृष्णदास कविराज मधुर रस के दो विभाजन कर रहे हैं, कौन कौन से हैं, स्वकीय और परकीय। स्वकीय का मतलब क्या है, जो कृष्ण की अपनी पत्नियां हैं तो उनमें यह भाव रहता है, और परकीय का मतलब क्या है, जो कृष्ण से विवाहिता नहीं है वो स्त्रियां कृष्ण के साथ जो संबंध रखती हैं, और इस संबंध में सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इस कारण से इस संबंध में ज्यादा तीव्रता होती है, क्योंकि इस संबंध को उन्हें छिपाना पड़ता है, लोगों के आगे ये बातें जो है दिखाई ना पड़े, लोगों को पता ना चले। तो चूंकि इस संबंध में ज्यादा चिंता रहती है और छिपाने की चेष्टा रहती है, इस कारण से ये संबंध ज्यादा श्रेष्ठ है। आगे कृष्णदास कविराज कहते हैं, परकीय मधुर भाव में रस की अत्यधिक वृद्धि होती है, ऐसा प्रेम ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता। परकीय भावे अति रसे रे उल्लास ब्रज बिनी ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं बास। तो यहाँ कृष्णदास कविराज क्या कहते हैं कि ब्रज के अतिरिक्त और दूसरे स्थान में ये रस नहीं मिलता। तो ब्रज का मतलब क्या है कि जहाँ पर गौएं हैं और गोपियां हैं और गोवर्धन है और यमुना है, ये स्थान है ब्रज का। जब भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम से जब आते हैं इस धरा धाम पर, तो उनके साथ में ये पूरा ब्रज धाम जो 84 कोस का ब्रज धाम है ये भी आता है। गोलोक धाम का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो 84 कोस का ब्रज धाम है, तो उसको भगवान अपने साथ लाते हैं, और इसका भी कारण बताया गया है, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि जब भगवान कृष्ण आने की तैयारी करते हैं अपने गोलोक धाम से इस धरा धाम पर, उसके पहले कुछ और भी घटनाएं होती हैं कि भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव और भी जितने देवता हैं उनको लेकर के जब जाते हैं गोलोक धाम में और कृष्ण का दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और भगवान कृष्ण वहाँ गोलोक धाम से फिर विचार करते हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए कि वो धरा धाम में जाएंगे, तो उस समय आश्वासन देते हैं सब देवताओं को और भूमि देवी को आश्वासन देते हैं कि मैं साक्षात पृथ्वी पर आकर के और पृथ्वी का भार उतारूंगा। तो जब सब देवता चले जाते हैं तो राधा रानी बड़ी उदास हो जाती हैं कि कृष्ण अगर जाएंगे गोलोक धाम में और राधा रानी को छोड़ के जाएंगे, तो राधा रानी चिंता करती हैं कि वे कैसे जीवित रहेंगी, कृष्ण के बिना कैसे जीवित रहेंगी। तो भगवान कृष्ण से वे बताती हैं कि वे अपना जीवन त्याग देंगी, वे अपने प्राणों को त्याग देंगी कृष्ण के विरह में। और जब कृष्ण देखते हैं कि राधा रानी नहीं रह पाएंगी कृष्ण के बिना, तो फिर कृष्ण कहते हैं राधा रानी से कि तो फिर तुम भी चलो मेरे साथ। तो इससे राधा रानी कहती हैं कि मैं नहीं जा सकती हूँ ऐसे स्थान में जहाँ वृंदावन नहीं है और गोवर्धन नहीं है और यमुना नदी नहीं है। तो एक और समस्या हो गई कि वे कृष्ण के बिना भी नहीं रह सकती हैं राधा रानी। लेकिन साथ साथ वो जो स्थान है ब्रज का जो स्थान है उसके बाहर भी नहीं जा सकती हैं। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं राधा रानी से तो ठीक है तुम्हारे साथ में ये पूरा 84 क्रोश की ब्रज भूमि भी चलेगी। तो इस तरह से भगवान राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए 84 क्रोश की जो ब्रज भूमि है उसको अपने साथ लाते हैं। तो ये जो मधुर भाव है परकीय मधुर भाव है तो ये जो है ना राधा रानी में और उनके जो सखियां हैं गोपियां हैं उनमें प्राप्त होता है। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ब्रज के अलावा और किसी स्थान में ये रस नहीं मिलता है। आगे कृष्णदास कविराज कहते हैं ये भाव ब्रज बालाओं में असीम है किंतु उनमें भी यह श्री राधा में अपनी पूर्णता को प्राप्त है। ब्रज बधु गणेर ए भाव निरवधि तार मध्य श्री राधा ए भावेर अवधि। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि सर्वोच्च अवस्था जो परकीय रस की है वो कहाँ है राधा रानी के अंदर है। आगे उनका शुद्ध प्रौण प्रेम अन्यों के प्रेम को पार कर जाता है। उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने का कारण है। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम है सर्वोत्तम कृष्ण रे माधुर्य रस आस्वाद कारण। अब ये जो 50वां नंबर का प्यार है ये बोर्ड में लिखा हुआ है और आप लोग मेरे पीछे बोले हैं अत एव से भाव अंगीकार करी साधी लेन निज वांछा गौरांग श्री हरि
साधी लेन निज वांछा गौरांग श्री हरि
अत एव से भाव अंगीकार करी साधी लेन निज वांछा गौरांग श्री हरि आता एव से भाव अंगीकार करी साधी लेन निज वांछा गौरांग श्री हरि
साधी लेन निज वांछा गौरांग श्री हरि।
इसलिए गौरांग प्रभु ने जो साक्षात श्री हरि हैं राधा के भावों को
स्वीकार करके
इस तरह
अपनी
निज इच्छाओं की पूर्ति की। तो तात्पर्य पढ़ने के पहले हम थोड़ा चर्चा करेंगे कृष्णदास कविराज के शब्दों के बारे में। तो कृष्णदास कविराज क्या कह रहे हैं कि अतएव से ही भाव अंगीकार करें, उस भाव को अंगीकार करके गौरांग श्री हरि ने अपनी इच्छा पूरी की। तो कौन सा भाव? राधा भाव। और गौरांग श्री हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण गौरांग रूप धारण करते हैं। गौर अंग, अंग का मतलब शरीर, जिनका शरीर कैसा है गौर है। तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने गौरांग रूप धारण किया यानी गौर शरीर धारण किया। वैसे उनका शरीर कैसा है? श्यामल है। लेकिन राधा भाव का आस्वादन करने के लिए राधा रानी का जो रंग है वो भी उन्होंने स्वीकार किया। तो इस प्रकार से वे राधा भाव में भगवान चैतन्य प्रकट होते हैं तो उनका शरीर भी जो ना गौरांग हो जाता है। इस प्रकार से उनकी इच्छा पूरी हुई। तो कृष्णदास कविराज का कहना यह है कि जब तक भगवान कृष्ण गौरांग रूप धारण नहीं करते हैं तब तक वो राधा भाव का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। राधा भाव का आस्वादन करने के लिए ये जरूरी है कि उन्हें अपना रंग बदलना होगा। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव को स्वीकार करते हैं। इसमें एक और दूसरी भी कुछ बातें सुनी जाती हैं कि जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों से कहा था कि वे उनके चिर ऋणी हो गए हैं, वे उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि इन गोपियों ने जितनी भी समाज की मर्यादाएं हैं उन सब का उल्लंघन करके और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने घरों को छोड़ा और जंगल में आई अर्धरात्रि में, बहुत बड़ा खतरा उन्होंने उठाया। तो भगवान कृष्ण ये मानते हैं कि वे इन गोपियों के इतने ज्यादा ऋणी हो गए हैं कि ऋण उतार नहीं सकते हैं। तो कुछ एक कारण ये भी है कि भगवान कृष्ण गोपियों का ऋण उतारने के लिए ये स्वयं गोपी भाव या राधा भाव का अनुभव करते हैं। वो जो ग्रह की अनुभूति है, राधा रानी ने कहा कि आपको तो पता नहीं है कि हमें कितना कष्ट हुआ आपके ग्रह में, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अब अगर तुमने बहुत कष्ट भोगा है तो उसका जो है ना जो ऋण है, तुम्हारी सेवा का जो ऋण है वो चुकाने के लिए अब मुझे स्वयं उस कष्ट को भोगना है, तो इसलिए मैं स्वयं अपने ही विरह का अनुभव करूंगा, अपने ही प्रेम का जो है अनुभव करूंगा। अब हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से सुने श्रील प्रभुपाद की
जय।
प्रेम के आदान प्रदान के चार प्रकारों दास्य सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य में से माधुर्य परिपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य का जो पहला वाक्य है, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि प्रेम के आदान प्रदान के चार प्रकार हैं, दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, जिनमें माधुर्य परिपूर्ण है। तो बाकी जो तीन है, दास्य सख्य वात्सल्य, ये क्या है? अगर माधुर्य परिपूर्ण है तो ये क्या है? ये पूर्ण है। तो इनमें भी कोई कमी नहीं है, दास भाव वात्सल्य भाव सख्य भाव, इनमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन माधुर्य और ज्यादा पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु माधुर्य रस को और दो विभागों में बांटा गया है, स्वकीय तथा परकीय। पति रूप में कृष्ण के साथ संबंध स्वकीय तथा उपपति के रूप में कृष्ण के साथ संबंध परकीय कहलाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, स्वकीय का मतलब क्या है? जब कोई स्त्री कृष्ण को अपना पति मानती है और समाज की दृष्टि में जो विवाहिता है कृष्ण के साथ, उसे कोई भय नहीं है, उसे कोई लज्जा नहीं है, वो अपने पति के समान पति के रूप में कृष्ण से बात करती है और उठती है बैठती है और कुछ बातें बताती है, कुछ बातें पूछती है, तो एक स्वाभाविक जो है ना उसका ये कार्य है कृष्ण से संबंध धारण करना, कृष्ण से संबंध रखना, क्योंकि वो कृष्ण की विवाहिता पत्नी है, तो समाज की दृष्टि में उसे किसी प्रकार का जो है भय नहीं है। तो स्वकीय भाव यानी कृष्ण को स्वपति मानना, अपना पति मानना और उनसे विवाहिता होना, और फिर परकीय भाव में क्या है, कृष्ण को उपपति मानना। तो जब कोई स्त्री विवाहिता है किसी दूसरे पुरुष से और फिर कृष्ण के साथ में उसका आकर्षण होता है, कृष्ण के रूप में, कृष्ण की लीलाओं में, कृष्ण के गुणों में जब उसका आकर्षण होता है, तो वो आकर्षण बहुत प्रबल होता है, लेकिन वो उसे छिपाने का प्रयास करती है, तो ये परकीय भाव कहलाता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दक्ष विवेचकों का निर्णय है कि परकीय रस की दिव्य अनुभूति श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वह अधिक उल्लासमयी होती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि दक्ष विवेचक, दक्ष का मतलब है जो निपुण है और विवेचक का मतलब है जो अध्ययन करने वाले हैं या उस विषय में ज्यादा विचार करने वाले हैं। तो जो विचारक हैं, जो निपुण विचारक हैं, तो वे क्या मानते हैं कि परकीय रस की दिव्य अनुभूति श्रेष्ठ है, स्वकीय से श्रेष्ठ है। क्यों? तो इस सखिया भाव में जो कृष्ण की पत्नियां हैं कृष्ण को अपना पति समझती हैं, तो उतना उल्लास नहीं होता है, उतनी उत्कंठा नहीं होती है कृष्ण से मिलने की। क्यों? क्योंकि कृष्ण का मिलन निश्चित है, वे कृष्ण की सेवा करती हैं, कृष्ण के घर में रहती हैं, तो निश्चित रूप से उनका मिलन है कृष्ण के साथ में, तो उसमें उतना तो नवीनता नहीं है कृष्ण के मिलन में। और साथ साथ उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो भी कुछ बटा हुआ है, क्योंकि घर की भी सेवा करनी है और घर के काम भी संभालना है कई प्रकार के, और फिर घर में जो बहुत से सेवक हैं और दासियां हैं तो उनको भी काम में लगाना है, और फिर घर के जो बच्चे हैं तो उनकी भी देखभाल करनी है, तो कई प्रकार के जो ना जो गृहस्थी के कार्यभार हैं उनमें भी उनका चित्त बटा है। तो कृष्ण में जो है उनकी उतनी ज्यादा प्रबल आसक्ति तो नहीं है, तो इसलिए इतना यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इतना उल्लास तो नहीं होता है। लेकिन जब परकिया भाव है तो चूंकि समाज की नजरों में चूंकि निंदनीय है इस प्रकार का संबंध, तो वे उस संबंध को गुप्त रख करके और कृष्ण से मिलने की विशेष चिंता करती हैं और विशेष इच्छा करती हैं, और कभी भी उन्हें अवसर नहीं मिलता है कृष्ण से मिलने का, यहाँ तक कि कृष्ण को देखने का भी अवसर नहीं मिलता है। अगर वो कृष्ण को देखती हैं तो भी उनका जो संबंध है वो जान लिया जाएगा, इस कारण से वे कृष्ण को देखने में भी डरती हैं। तो इस प्रकार से चूंकि उनके हृदय में हमेशा चिंता रहती है कृष्ण से मिलने की, और कभी अगर अवसर मिले कृष्ण से मिलने का तो आप सोचिए कितनी उत्कंठा होती है कृष्ण से मिलने की। तो यहाँ इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि परकीय रस की दिव्य अनुभूति इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें अधिक उल्लास होता है, और विशेष रूप से यहाँ कृष्ण के विरह का अनुभव होता है, बहुत ज्यादा विरह का अनुभव होता है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी जो सबसे श्रेष्ठ आराधना जो बतलाई है तो वो क्या है, रम्या काज दुपासना ब्रज बधु वर्गेण या कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु मतमेदम, श्री चैतन्य महाप्रभु का यही मत है। चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है कि कृष्ण को कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ आराधना की जो विधि है वो क्या है, जो कि ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता, जो ब्रज की वधुएं हैं उन्होंने मिलकर के जो निकाली है पद्धति वो विशेष रमणीय है। तो रमणीय पद्धति क्या है, कृष्ण से विरह का अनुभव करना। ये जो ब्रज की गोपियां हैं तो इनको कृष्ण के विरह का अनुभव होता है। तो ये जो है ना चूंकि कृष्ण को ज्यादा आनंद प्रदान करने वाली है, तो इसलिए इन गोपियों को जो कृष्ण के विरह का दुख अनुभव होता है ये भी एक विशेष प्रकार का सुख है, क्योंकि कृष्ण इससे सुखी होते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, माधुर्य रस की ये अवस्था उनमें पाई जाती है जिन्होंने तीव्र प्रेम में भगवान को यह जानते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है कि उपपति के साथ ऐसा अवैध प्रेम समाज द्वारा मान्य नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि इसमें जो है बहुत बड़ा जो है त्याग है गोपियों का, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वे जो है समाज के जो जो लोकाचार है, समाज का जो लोकाचार है, सम्मान जो व्यवहार है, तो उसका वो त्याग कर रही हैं। जो समाज की दृष्टि में जो निंदनीय कार्य है वो भी वो करने के लिए तैयार हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो ये जो गोपियां हैं ये बहुत सम्मानित हैं, कोई व्यक्ति समाज में बहुत सम्मानित हो लेकिन तो भी वो जो है अगर निंदनीय कार्य करे तो ये बहुत बड़ा उसके लिए कष्ट होता है। लेकिन चूंकि गोपियां सम्मानित हैं और उत्तम कुल की वधुएं हैं, लेकिन फिर वो कृष्ण के लिए उन लोक मर्यादाओं का त्याग कर रही हैं, तो ये विशेष जो है उनका समर्पण है और ये उनका विशेष प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो ये जो है ना प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे इस प्रेम में जो खतरा निहित रहता है वह इस भाव को उस संबंध से अधिक श्रेष्ठ बना देता है जिसमें ऐसा खतरा रहता ही नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण के लिए जितना अधिक खतरा उठाए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो वो उतना ही अधिक कृष्ण को प्रिय होता है। तो भक्त लोग भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के जो भक्त हैं, ये भी कृष्ण के प्रचार के लिए बहुत खतरे उठाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हैं, तो वो 70 साल की अवस्था में उन्होंने खतरा उठाया क्या करने का, 70 साल की अवस्था में कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए वो विदेश गए, अकेले गए, उनके साथ में कोई व्यक्ति नहीं था और वृद्धावस्था थी, उनका शरीर भी जो है ना साथ नहीं दे रहा था, उसके साथ में उनके कोई अनुयायी भी नहीं था, इसके अलावा उनके पास पैसा भी नहीं था, केवल 40 रुपए जेब में पड़े हुए थे जब प्रभुपाद जी गए। और जब जलदूत नामक जहाज में बैठे हुए थे पानी के जहाज में, तो उनको दिल के दौरे पड़े, कितना खतरा। और उस खतरे में भी प्रभुपाद जी उस जहाज के जो कप्तान थे या जो और दूसरे कर्मचारी थे, उनसे उन्होंने इस बात को नहीं बताया कि उनकी तबीयत खराब है। अगर वो बताते तो वो लोग क्या कहते हैं, इसीलिए आपको मना किया था कि आप मत जाओ, आपको जब मना किया कि मत जाओ तो आप क्यों आ गए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जानते थे कि ये अच्छा नहीं, ये शोभा नहीं देगा कि वो उन लोगों से कहें, क्योंकि वे कृष्ण के बलबूते पर जो है, क्योंकि अकेले जा रहे हैं अमेरिका में, तो अब ये उचित नहीं होगा कि वे किसी को कहें कि कोई डॉक्टर बुलाए या उनकी कुछ देखभाल करें, उनकी सेवा करें या उनको पानी दे, उनके लिए भोजन बनाए। तो ऐसी हालत में भी उन्होंने केवल कृष्ण का ही आश्रय लिया और किसी को कुछ नहीं बताया और दिल के दो दौरे पड़े प्रभुपाद जी को। तो कृष्ण के लिए उन्होंने इतना खतरा उठाया, तो कृष्ण तो यही देखते हैं कि आप कितना खतरा उठाते हैं कृष्ण के लिए। कृष्ण की सेवा में जो भक्त लोग हैं वो कई प्रकार के खतरे उठाते हैं और कृष्ण ये देखते हैं। जो भक्त मृत्यु के निकट हैं तो अभी वे जो है कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, तो कृष्ण जो है ऐसे भक्तों के विशेष ऋणी होते हैं। जैसे कि गजेंद्र था, तो जब उसका पैर सरोवर में मगरमच्छ ने पकड़ लिया और 1000 साल तक, 1000 साल तक जब उसका युद्ध हुआ उस मगरमच्छ के साथ और उसकी पूरी शक्ति समाप्त हो गई और पैर से इतना खून बह गया कि अब वो खड़ा रहने में भी असमर्थ था, अब डूब रहा था वो। तो जब भगवान को पुकारा तो भगवान उसकी रक्षा के लिए जब आए गरुड़ में बैठ करके, तो जब भगवान आकाश में थे गरुड़ के ऊपर और उसने जैसे ही देखा तो देखिए भगवान के लिए तो उस समय गजेंद्र ने भगवान को जैसे देखा आकाश में गरुड़ पर हैं, तो इतने खतरे में भी, इतने संकट में भी वो भगवान की सेवा के लिए क्या करता है, कमल का फूल अपने सूंड से उखाड़ करके और भगवान को अर्पित करता है। तो भगवान ने जब देखा इतने खतरे में भी वो उनको फूल अर्पण कर रहा है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम में बहुत खतरा उठा रही हैं, जबकि विवाहित जो स्त्री पुरुष हैं वो एक साथ उठते हैं बैठते हैं, जो पत्नी है वो पति के साथ बैठती है, तो कौन आपत्ति करेगा, है ना, क्योंकि वो वैध पत्नी है, तो इसलिए वो पति के हाथ से कुछ लेती है देती है और जो है बातचीत करती है और साथ उठती है साथ बैठती है, तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन खतरा यहाँ खतरा देखने में भी बड़ा खतरा है, कृष्ण की तरफ देखने में भी उनको बड़ा खतरा लगता है कि लोग समझ जाएंगे कि क्या संबंध है। तो इस प्रकार से इसमें जो है ये संबंध इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वे खतरा उठा रही हैं, इसलिए तो प्रभुपाल लिखते हैं किंतु ऐसे खतरे की वैधता केवल दिव्य लोक में ही संभव है। ये जो खतरा है इस भौतिक संसार में कोई स्त्री अगर उठाती है तो ये जो है ये वैध नहीं है, ये सम्मानित नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन इस प्रकार के खतरे की प्रशंसा दिव्य लोक में संभव है। ईश्वर के सुखी तथा परकी माधुर्य रसों का भौतिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं होता। हाँ, ये जो माधुर्य रस का जो है संबंध है इस भौतिक संसार में बिल्कुल नहीं मिल सकता। वात्सल्य भाव का तो मिलता है, जैसे कृष्ण प्रिया प्रभु बता रहे थे, वात्सल्य भाव का तो मिलता है, वो भी क्या जब नवजात बालक होता है तो माता का जो है एक निस्वार्थ भाव है बच्चे के प्रति रहता है उस समय। हरे कृष्णा। आंखें खोलो, आंखें आपकी रुचि के कारण ही मैं बोलूंगा, नहीं तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। तो मैं क्या बता रहा हूं, माधुर्य रस का उदाहरण इस भौतिक संसार में बिल्कुल नहीं मिलता। वात्सल्य भाव का हाँ मिलता है, वो किस समय जब माता को नवजात शिशु उत्पन्न होता है उस समय जो ना उसके अंदर जो सेवा की भावना होती है ना, तो वो उसको कह सकते हैं वात्सल्य भाव का उदाहरण। जैसे जैसे बच्चा एक दिन दो दिन जैसे जैसे बड़ा होता है, एक महीना दो महीना, तो फिर माता आशा करने लगती है कि अब ये मेरी लुटिया उठाएगा, है मुझे एक लोटा पानी देगा, आगे चल करके जो है ना मेरा पालन पोषण करेगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो ये करेगा मेरी सेवा, तो फिर उसमें ये रहता है। और जैसे और बड़ा हो गया तो फिर माता ताने देने लगती है, कि कुछ नहीं करता घर में बैठा है, कहाँ से तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, अब चल काम कर जा करके ना। लेकिन ये भाव नंद यशोदा में कभी नहीं होता है कृष्ण के प्रति। कृष्ण गौ में चराने जाते हैं तो उनको कष्ट ही होता है ना, कृष्ण कुछ नहीं करें, वो चाहते हैं कृष्ण का पालन करें, कृष्ण की रक्षा करें, है ना। तो ये जो वात्सल्य भाव है इसका कुछ है, जो झलक है इस भौतिक संसार में दिखाई पड़ती है केवल थोड़े समय के लिए। जब बच्चा बिल्कुल असहाय है तो माता जो ना उसको खिलाना पिलाना चाहती है, रक्षा करना चाहती है और उसको जो है ना सेवा करना चाहती है। लेकिन स्वकीया प्रक्रिया इसका कोई उदाहरण इस भौतिक संसार में नहीं है। अगर वो है तो इसी प्रकार से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि वो उसको काम कहा जाता है जबकि ये है प्रेम, बिल्कुल समझ नहीं सकते हम। इस भौतिक संसार में जो स्त्री पुरुष का संबंध है इससे कभी भी नहीं समझा जा सकता है कृष्ण का जो राधा रानी के साथ संबंध या गोपियों के साथ संबंध है, कभी नहीं समझा जा सकता। दिन और रात जैसा है तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं होता स्वकीय परकीया माधुर्य रस का, और परकीय रस गोलोक वृंदावन के अतिरिक्त वैकुंठ लोक के अन्य किसी भाग में भी लक्षित नहीं होता। परकीय तो वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा, स्वकीय भाव तो वैकुंठ में मिल जाएगा, स्वकीय भाव वैकुंठ में मिल जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु की कुछ पत्नियां हैं जो कि उन जो कि प्रतिष्ठित हैं पत्नी के रूप में, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, गंगा हैं, तुलसी हैं, तो ये सब जो ना भगवान की पत्नियां हैं वैकुंठ में, तो ये प्रतिष्ठित हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन में ही जो है ना परकीय रस मिलता है ना। आगे प्रबलते हैं, कुछ भक्त सोचते हैं कि कृष्ण गोलोक वृंदावन में निरंतर भोग करते हैं और केवल कभी कभी परकीय रस का भोग करने ब्रज में आते हैं, किंतु वृंदावन के षट गोस्वामियों ने बतलाया है कि ब्रज में कृष्ण की लीलाएं गोलोक वृंदावन की अन्य लीलाओं के ही समान शाश्वत हैं। ब्रज गोलोक वृंदावन का कोई अंग है। कृष्ण ने इस जगती तल पर अपनी ब्रज लीलाएं की, पर ऐसी लीलाएं गोलोक वृंदावन में ब्रज में दिखलाई जाती हैं, जहां पर की रस का अस्तित्व है। तो ये जो विचार है, ये तो हम लोगों ने कई बार ऐसा विचार किया है, ऐसा बोला भी है क्या कि हाँ आध्यात्मिक जगत में ये परकीय रस नहीं है, इसलिए भगवान परकीय रस का आस्वादन करने के लिए यहाँ आते हैं। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, जो वृंदावन के छह गोस्वामी है वो कहते हैं कि जो ब्रज में परकीय रस का जो भाव प्रकट हुआ है, ये भी भगवान की नित्य लीला है। और गोलोक धाम में जो 84 कोस की जो ब्रज भूमि है, वहां पर ये लीलाएं इसी प्रकार से चलती हैं जैसी यहाँ भगवान ने प्रकट किए हैं। जो 84 कोस की ब्रज भूमि है, जिसमें कि जमुना जी हैं और गोवर्धन है, ये पूरी की पूरी जो ब्रज भूमि है ये उतर के आती है, तो यहाँ पर जो भगवान ने लीलाएं प्रकट की हैं वो वहाँ पर हैं, शाश्वत रूप से हैं। आगे प्रोपर कहते हैं, इस महाकाव्य के तृतीय अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि कृष्ण द्वापर युग के अंत में व्यवस्थित मनु के 28वें चतुर्युग में प्रकट होते हैं और अपने साथ ब्रज धाम को लेते आते हैं, जो उनकी सर्वोच्च लीलाओं का नित्य धाम है। जिस प्रकार भगवान अपनी ही अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न होते हैं, उसी तरह वे अपनी उसी अंतरंगा शक्ति से अपनी सारी साज सामग्री भी लेते आते हैं। उन्हें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि कृष्णदास कविराज ने यह बात स्वीकार की है कि ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिवस में, यानी प्रत्येक कल्प में, सातवें मन्वंतर के 28वें द्वापर के अंत में कृष्ण जब आते हैं, तो गोलोक धाम जो उनका है, उसका जो है सबसे जो गोपनीय हिस्सा है वो क्या, वो कौन सा है? ब्रज धाम 84 कोस का जो ब्रज धाम है, तो उसकी सब सामग्री लेके आते हैं और उस भूमि को भी लेके आते हैं। तो सब सर्वोच्च लीलाएं, गोलोक धाम की भी सर्वोच्च लीलाएं वो है ब्रज धाम में। गोलोक धाम में जो है, गोलोक धाम के अंदर मथुरा भी है, द्वारका भी है, नवदीप भी है, बहुत से हिस्से हैं गोलोक धाम के। लेकिन जो 84 कोस का ब्रज धाम है, जब भगवान लाते हैं उसको, तो उसकी उस धाम की जो लीलाएं हैं वो यहाँ प्रकट करते हैं एक नमूने के रूप में। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्हें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, कि कुछ बाहरी चीजें भी जो है ना जोड़ी जाएं, नहीं है। तो सब कुछ वही है, उसी स्थान का एक नमूना है जो भगवान ने दिखलाया है, जिसमें कुछ भी जो है ना ये भौतिकता का जो है मिश्रण नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यहां यह भी कहा गया है कि परकीय भाव केवल उसी दिव्य लोक में पाया जाता है, अन्यत्र नहीं। परकीय भाव उसी दिव्य लोक में, मतलब गोलोक धाम का वो हिस्सा, उस हिस्से में ही, आध्यात्मिक जगत में कहीं नहीं मिलेगा वो परकीय भाव। ना तो हाँ, ना तो द्वारका में मिलेगा, ना मथुरा में,
गोलोक में उसके अंदर जो,
हाँ गोलोक के अंदर जो है, जो ब्रज धाम है 84 कोस का, उसके अंदर है, उसके अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। गोलोक धाम में भी कहीं नहीं मिलता। सर्वोच्च भाव दिव्य जगत के गुह्यतम अंश में ही पाया जा सकता है, किंतु भगवान की अहेतु की कृपा से हम उस अदृश्य ब्रज में भी झांक सकते हैं। वो यद्यपि वहां तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रज धाम है, तो यहाँ पर हम भगवान की लीलाओं का वो दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, दिग दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि उस धाम की लीलाओं का हमें दिग दर्शन कराने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं।
आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रज में गोपियों द्वारा आस्वाद किया जाने वाला दिव्य रस श्रीमती राधा रानी में पाया जाता है। माधुरी रस का प्रौढ़ है स्वांगीकरण श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनकी भावनाएं स्वयं भगवान के लिए भी समझ से बाहर हैं। उनकी प्रेमा भक्ति की तीव्रता उल्लास का सर्वोच्च रूप है। भगवान के दिव्य रस का आस्वादन करने में श्रीमती राधा रानी अप्रतिम है। इसीलिए भगवान ने श्री गौरांग के रूप में राधा रानी का पद ग्रहण करना स्वीकार किया, तभी उन्होंने सर्वोच्च परकीय रस का आस्वादन किया, जैसा कि दिव्य धाम ब्रज में जट होता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब चैतन्य चरितामृत से ही मैं एक ऐसी लीला सुनाऊंगा पढ़ करके, जिसमें गोपियों के जो माधुर्य भाव है उसका पता चलता है, और फिर राधा रानी का और विशेष उसमें पता चलता है, गोपियों से भी ज्यादा विशेष राधा रानी है। इस लीला को जो है मैं पढ़ रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 है, इसको आप ध्यान से सुनिए। गोपियों की क्या विशेषता है दूसरे भक्तों की तुलना में, कि वे कृष्ण के द्विज रूप के अलावा कृष्ण के दूसरे रूपों को भी नहीं चाहती। कृष्ण अगर कोई दूसरा रूप स्वीकार कर लेते हैं तो वो आकर्षित नहीं होती कृष्ण के दूसरे रूप में। और राधा रानी की और विशेषता वो क्या है, कि राधा रानी के सामने कृष्ण कोई रूप धारण कर भी नहीं सकते। अगर वो धारण करना भी चाहें तो धारण नहीं कर सकते हैं। गोपियों के सामने तो वो रूप धारण कर भी लेते हैं, लेकिन गोपियां आकर्षित नहीं होती। ये तो गोपियों की विशेषता है। लेकिन राधा रानी की और विशेषता है, वो क्या है, कृष्ण और कोई रूप धारण कर ही नहीं सकते। अगर करते भी हैं तो वो रूप रहता नहीं उनका। अब सुनिए आप इसमें क्या है। कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी के प्रेम के रस का आस्वादन करने और कृष्ण रूप आनंद के आगार को समझने के लिए ही स्वयं कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव को स्वीकार किया। स्वमाधुर्य राधा प्रेम रस आस्वादिते राधा भाव अंगीकारी अचे भले मके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन गोपियों का भाव स्वीकार किया जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में मानती हैं। गोपियां जो है ना, कृष्ण के अलावा और किसी को अपना प्रियतम नहीं मानती हैं, प्रेम नहीं कर सकती, अपना हृदय नहीं दे सकती हैं। गोपी भाव जाते प्रभु धरे अच्छे एकांत ब्रजेर नंदन माने आप नारे कांत। ये सुदृढ़ निश्चय है कि गोपिकाओं का भाव कृष्ण के ही समक्ष संभव है, अन्य किसी के नहीं, किसी अन्य के प्रति नहीं। गोपिका भावे रे सुदृढ़ निश्चय ब्रजेंद्र नंदन बिना अन्यत्र न है। वो ब्रजेंद्र नंदन जिनके प्रति उनका जो प्रेम भाव है, प्रेमी का भाव है, वो कैसा उनका रंग है, उनका रंग श्यामल है, और कोई दूसरे रंग में वो आकर्षित नहीं होंगी। श्यामल रंग है, सिर पर क्या है, मोरपंख है, और माला घुंघची की है। अगर वो द्वारका का वेश धारण कर लेंगे तो उनका भाव संकुचित हो जाएगा। घुंघची की माला, गुंजा माला, गुंजा माला, और वेशभूषा ग्वालों जैसी है, गौ में चराने वाले हैं। अगर राजसी वेशभूषा धारण कर लेंगे तो उनका भाव संकुचित हो जाएगा। और उनका शरीर तीन स्थानों से मुड़ा है, त्रिभंग ललित घुटने से मुड़े हैं, कमर से टेढ़े और गर्दन से टेढ़े हैं, और मुख में बंसी है। श्याम सुंदर से की पिछे गुंजा विभूषण गोप वेश त्रिभंग में मुरली बदन। यदि भगवान कृष्ण अपने आदि रूप को छोड़कर कोई अन्य विष्णु रूप धारण करते हैं तो उनके निकट जाने पर भी गोपी भाव जागृत नहीं होता। अगर कृष्ण कोई रूप धारण कर ले तो गोपियों का भाव नहीं जाग सकता है। यह छाड़ी कृष्ण जा दे है अन्याकार गोपिकार भावना जे निकट ताहा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, खेल खेल में अपने को चार हाथों वाले अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले नारायण के रूप में प्रकट किया, किंतु दिव्य रूप को देखकर गोपियों की दिव्य भावनाएं संकुचित हो गई। अतः विद्वान व्यक्ति उन गोपियों के भावों को नहीं समझ सकते जो नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के आदि रूप पर लट्टू हैं। कृष्ण के परम रस में गोपियों के अद्भुत भाव आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी गुत्थी हैं। बहुत मुश्किल है समझना, बहुत गूढ़ है गोपी भाव। गोपी नाम वसुपेंद्र नंदन जसो भावस्य कथां कृति विज्ञातुं क्षमते दुरूह पदगी संचारिणां प्रक्रियां आविष्कुर्वति वैष्णवीमपि तनुं तस्मिन् भुजैर्जिष्णुभिः यासां हन्त चतुर्भिरद्भुतरुचिं रागोदयः कुञ्चति। तात्पर्य में रूपा लिखते हैं, ये श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत ललित माधव 6.14 से लिया गया है। अब ये घटना कैसी है, बसंत ऋतु में जब रास नृत्य हो रहा था तो कृष्ण सहसा घटना स्थल से ये दिखाने के लिए अंतर्धान हो गए कि वे श्रीमती राधा रानी के साथ एकांतवास चाहते हैं। बसंत काले रास लीला करे गोवर्धन अंतर्धान कैला संकेत करी राधा सने। कृष्ण एकांत कुंज में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी उधर आए, किंतु तभी गोपियां सैनिकों के व्यूह जैसी वहां आ गईं। वो राधा रानी का इंतजार कर रहे हैं कि गोपियों से अलग होकर के राधा रानी से मिले, और आ गईं गोपियां सैनिकों जैसी, जैसे कि किसी चोर को ढूंढ रही हूं, सैनिक लोग चोर को ढूंढ रहे हैं और कृष्ण चोर है और गोपियां सैनिक है। हाँ, तो कृष्ण गोपियों से चोरी करके राधा रानी से मिलना चाह रहे हैं, तो कृष्ण तो चोर हैं, गोपियों से दूर होकर के और गोपियां आ गई कृष्ण को ढूंढने के लिए, तो जैसे चोर को ढूंढने के लिए सैनिक आए, ऐसी कृष्ण की स्थिति हो गई। निभृत ने कुंजे बस देखे राधर बाट अन्वेषित अलाता हाँ गोपी कार ठाट। दूर से कृष्ण को देखकर गोपियों ने कहा, जरा देखो ना, ये रहे कुंज के भीतर नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण, यानी चोर, यहाँ चोर बैठा हुआ है। दूर है ते कृष्ण देखी बाले गोपी गण ए देखे कुंजर भीतर ब्रजेंद्र नंदन। अब यहाँ कृष्ण ने देखा, कृष्ण गोपियों को देखा तो भाव बेहवल हो गए। जैसे चोर जो है ना शक पका जाता है, जब छिपा हुआ पुलिस देखती है तो चोर को फिर कैसा लगता है, वो पुलिस से छिप करके बैठा हुआ है और पुलिस आ गई उसको उसके सामने, तो चोर को कैसा लगता है। तो कृष्ण को वैसे ही लगा जब गोपियां आ गई कृष्ण के सामने, तो बेहवल हो गए, इस तरह अपने को छिपा नहीं सके। अब भय वश वे जड़ हो गए, अब हिलडुल नहीं पाते कृष्ण, हिले डुले बोलने की बात छोड़ो, हिलडुल भी नहीं सकते हैं।
गोपी गण देखी कृष्ण हिला साधु लोकाई थे नारिल भय हिला विवश।
तो अब क्या हुए, बिल्कुल जड़ हो गए, हिलडुल नहीं सकते हैं बिल्कुल। तो फिर अब क्या हुआ, कृष्ण ने अपने को छिपाने के लिए एक ही उपाय था उनके पास, वो क्या है, अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करें। तो कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप धारण करके वहां बैठ गए। जब सारी गोपियां आई तो उन्हें देख करके इस प्रकार बोली कि नहीं नहीं, ये तो चोर नहीं है, ये तो दूसरा व्यक्ति है। चतुर्भुज मूर्ति धरे आचन रसिया कृष्ण देखी गोपी का ये निकट आसिया। और गोपियां क्या कहते हैं, अरे ये तो कृष्णा नहीं है, ये तो भगवान नारायण है, तो इनको तो प्रणाम करो, नमस्कार करो दूर से। ये कहकर उन्होंने नमस्कार किया, उनकी सादर स्तुति की। यहाँ कृष्ण न है यो नारायण मूर्ति एते बलि तारे सब करे नति स्तुति। कैसे, हे नारायण
हम आपको नमस्कार करती हैं, आप हम पर कृपालु होइए। तो क्या कैसी कृपा करो, कैसी कृपा करो, आप हमें कृष्ण का पता बताइए और हमारे शोक को दूर करिए, कृष्ण से मिलाइए हमको। नमो नारायण देव करह प्रसाद, कृष्ण संग देह मोर घोचा विषाद। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, गोपियां नारायण के चतुर्भुज रूप को देखकर भी आनंदित नहीं हुई, उन्होंने भगवान को केवल नमस्कार किया और उनसे कृष्ण का साथ प्राप्त करने का वर मांगा। ऐसा है गोपी भाव। ये कहकर और नमस्कार करके सारी गोपियां इधर उधर चली गई। तब श्रीमती राधा रानी आई और भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट हुई। अब देखिए, अब क्या विशेषता राधा रानी की, गोपियों की विशेषता बदलाई। गोपियों की विशेषता यह है कि भगवान के किसी रूप को देखते हैं तो वो जो है आकर्षित नहीं होती हैं, प्रणाम नमस्कार करती हैं। लेकिन अब राधा रानी आई, इतने बाली नमस्कार गेला गोपी गण, हे निकाले राधा आती दीला दर्शन। जब कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो कृष्ण क्या सोचते हैं कि चलो अब राधा रानी को थोड़ा क्या करूं, धोखा दूं, आनंद लूं, इनको मूर्ख बनाने का आनंद लूं, कि राधा रानी को भी दिखाऊं अपना चतुर्भुज रूप, देखें क्या सोचती हैं राधा रानी। तो कृष्ण राधा रानी को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, तो क्या करते हैं, अपना चतुर्भुज रूप उन्होंने बनाए रखा, मतलब द्विभुज रूप नहीं धारण किया। चतुर्भुज तो पहले बनाए हुए थे और गोपियां चली गई, तो सोचा कि अब राधा रानी जो ना क्या सोचती हैं मुझे देख करके चतुर्भुज रूप में। तो ये देखने के लिए कृष्ण ने अपना द्विभुज रूप धारण नहीं किया, अपना चतुर्भुज रूप बनाए रखा, किंतु ऐसा कर नहीं पाए। लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि चतुर्भुज रूप बना रहे, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा। राधा देखी कृष्ण तारे हास्य करी थे, से चतुर्भुज मूर्ति चाहे ने राखी थे। राधा रानी के सम्मुख श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाएं दिखाने का प्रयत्न किया, उनके सामने अपनी चारों भुजाएं रखने का उन्होंने पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। राधा रानी के प्रेम के आगे कृष्ण की शक्ति है ही नहीं कि वे चार भुजाएं प्रकट कर सकें। चार भुजाएं तो पहले से प्रकट की हुई थीं, गोपियों के सामने तो प्रकट कर दी। गोपियों ने मान लिया कि ये चतुर्भुज नारायण है, राधा रानी के सामने वो कर ही नहीं पा रहे हैं। प्रेम की शक्ति ज्यादा है कृष्ण की शक्ति से। लुकैला द्वि भुज राधारा आग्रते, बहु यत्न कैला कृष्ण नारीला राखीते। राधा रानी के शुद्ध भाव का प्रभाव अचिंत रूप से इतना महान है कि उसने कृष्ण को अपना आदि द्विज रूप धारण करने के लिए बाध्य कर दिया, कर ही नहीं सकते। राधा रावे शुद्ध भावेर अचिंत प्रभाव, जे कृष्ण रकार आईला द्विज स्वभाव। अब रूप गोस्वामी का एक श्लोक है उज्ज्वल नीलमणि से, रास नृत्य प्रारंभ होने के पूर्व भगवान कृष्ण ने परिहासवश अपने आप को कुंज में छिपा लिया। जब मृग के समान नेत्रों वाली गोपियां आईं, तो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा कृष्ण ने अपने को छिपाने के लिए अपना सुंदर चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। किंतु जब श्रीमती राधा रानी आईं, तो वे उनके सामने अपना वह चतुर्भुज रूप नहीं रख पाए। ये श्रीमती राधा के प्रेम की अद्भुत महिमा है। रास आरंभ विधो निलीय वसताम, कुंजे मृगाक्षी गणे दृष्टम गोपय तुम समुद्धर धियाम, या सुष्टु संदर्शिदाम राधाया प्रणयस्य हंत महिमाम, यस्य श्रिया रक्षितुम सासक्या प्रभ विष्णुनापि हरिणाम नासी चतुर्बाहुता।
कि
किसी को कुछ कहना है या कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु, धन्यवाद। एक बड़ा अच्छा विषय कृष्ण प्रिया ने छेड़ा है कि प्रभुपाद जी साहब कहते हैं कि भौतिक संसार में माधुरी रस नहीं प्राप्त हो सकता है कि ना कृष्ण के अलावा और इस भौतिक संसार में किसी प्रकार से संबंध संभव नहीं है माधुरी रस का, लेकिन कुछ पाखंडी लोग हैं वो करते हैं। इसमें प्रभुपाद जी की टीका है, प्रभुपाद का तात्पर्य है कि चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का सत्रवाध्याय श्लोक संख्या 276 प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुभाष्य में लिखते हैं, श्री गौर सुंदर श्रीमती राधा रानी के भाव में साक्षात कृष्ण है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी गोपी भाव नहीं त्यागा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी कृष्ण का भाव नहीं स्वीकार करते हैं, भोगने का भाव नहीं स्वीकार करते हैं, गोपी भाव स्वीकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कभी भी पुरुष भाव स्वीकार नहीं करते हैं चैतन्य महाप्रभु कि वो गोपियों को भोगे हैं, वे सदैव कृष्ण को प्रधानता देते रहे और उन्होंने कभी भी किसी सामान्य स्त्री के साथ माधुर्य रस का अनुकरण करते हुए भोक्ता की भूमिका स्वीकार नहीं की। किसी स्त्री के साथ माधुर्य रस का संबंध चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बनाया, जैसा कि सामान्यतया सहजीय करते हैं। देखिए प्रभुपाद जी निंदा कर रहे हैं क्या? प्रभुपाद जी निंदा कर रहे हैं किसकी? सहजियों की, बहुत निंदा करते हैं। तो सहजीय करते हैं, उन्होंने कभी भी अपने को लंपट नहीं बनने दिया चैतन्य महाप्रभु ने। लंपट, स्त्री लंपट मतलब एक स्त्री को छोड़ के दूसरे स्त्री के पास जाए, दूसरे से तीसरे स्त्री को पास जाए, लंपट नहीं बनने दिया। सहजिया संप्रदाय के सदस्य स्त्रियों के पीछे, यहां तक कि पर स्त्रियों के पीछे दीवाने रहते हैं।
तो हम ऐसे पाखंडियों से बचकर रहें, धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की
जय।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की
जय।
श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की
जय।
श्री श्री गौरनताय भगवान की
जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की
जय।